ये आकाशवाणी है, अब आप रवि कपूर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कनाडा के कनाना स्किस में G7 शिखर बैठक में शामिल होंगे। वे आज सवेरे कनाडा में कैलगरी पहुंच गए। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में लगातार छठी बार भाग ले रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर कनाडा की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी शिखर बैठक से अलग कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री G7 और आमंत्रित देशों के नेताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे।
G7 विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। इसके सदस्य वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हर वर्ष G7 शिखर सम्मेलन में मिलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत को G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता रहा है। भारत ने पिछले शिखर सम्मेलनों में हमेशा ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों को सामने लाया है। पिछले वर्ष इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए अन्य आमंत्रित देशों के साथ भाग लिया था। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सरकार ने देश के अलग अलग भागों में 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये प्रशिक्षण स्कूल देश के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री गडकरी ने कहा कि देश में करीब 22 लाख ड्राइवरों की कमी है।
अभी ट्रक ड्राइवर के लिए ये भी 18-18, 16-16 घंटे चलाते हैं। विदेशों में ऐसी सिस्टम है कि वो कार्ड डालता है और 8 घंटे हुए कि उसको उतरना ही पड़ता है, गाड़ी चालू नहीं होती। अब वो ला रहे हम लोग, इसके बाद ट्रक और बसेस में कार्ड सिस्टम होगी, 8 घंटे हो गए तो गाड़ी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया है, देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। तो हम 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पर खोल रहे हैं, विशेष रूप से सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड ट्राइबल एरिया में, पिछड़े हुए क्षेत्र में, ताकि वहां के युवा ड्राइविंग सीखे और उनको रोजगार मिले।
वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है और कहा है कि यह हमला वित्तीय सहायता के बिना संभव नहीं हो सकता। FATF ने आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराए जाने के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए अपने वैश्विक नेटवर्क के भीतर 200 से अधिक अधिकार क्षेत्रों को अपने समर्थन की पुष्टि की। FATF के अध्यक्ष एलिसा डी एंडा माद्राजू ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया था कि कोई भी कंपनी, प्राधिकरण या देश अकेले आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकता है और वैश्विक आतंकवाद के संकट के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना चाहिए। FATF शायद ही कभी आतंकवादी हमलों की निंदा करता है और पिछले दशक में ये केवल तीसरी बार है जब इस संस्था ने आतंकवादी हमले की निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सभी लोगों से तेहरान छोड़ने का अनुरोध किया है। हालांकि राष्ट्रपति ने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। तेहरान में करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। इस बीच संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने ईरान के सबसे बड़े यूरेनियम संवर्धन केंद्र को काफी नुकसान होने की पुष्टि की है। ईरान की राष्ट्रीय प्रसारण एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग इसराइल हमले की चपेट में आ गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक दूसरे के रिहायशी और बुनियादी सुविधा केंद्रों पर दोनों देशों के हमले से संघर्ष और बढ़ गया है। ईरान और इसराइल के बीच जारी घटनाक्रम को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर नजर रखने और भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। विदेश मंत्रालय ने इसके लिए कई हेल्पलाइन नंबर साझा किए हैं। इनमें टोल फ्री नंबर 1800-118-797 और 9111-2301-2113 शामिल हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि कल रात तक अहमदाबाद विमान दुर्घटना के 125 शवों की पहचान DNA टेस्ट के जरिए की गई है। इनमें से 83 शवों को पहले ही परिवार वालों को सौंप दिया गया है। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत की महिला टीम आज और कल अर्जेंटीना की महिला टीम के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।